भगवते वासुदेवाय यता हियुयं नृपदेव दुष्टया जात अपाद्गनात् उत्तरात्मनः प्रभो यत्पादपं करुः सेवय भावन् आहारसि निर्ज्य दिग्गज कृतन्।
हे राजा युधिष्ठिर, तुम सभी पांडवों ने परमेश्वर की सेवा के कारण अनेक राजाओं तथा देवताओं द्वारा उत्पन्न बड़े से बड़े संकटों पर विजय प्राप्त कर ली। तुमने कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके हाथियों के समान बड़े बड़े शत्रुओं को जीत लिया है और अपने यज्ञ के लिए सामग्री एकत्र की है। भगवत कृपा से तुम भवबंध से छूट जाओगे। तात्पर्य शिला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। महाराज युधिष्ठिर ने अपने को सामान्य गृहस्थ के रूप में प्रस्तुत करते हुए नारद मुनि से पूछा कि किस तरह गृह मेधी गृहस्थ जीवन में फंसकर मूर्ख बना रहने वाले युक्ति का उदार हो सकता है। नारद मुनि ने यह कहते हुए महाराज युधिष्ठिर को प्रोत्साहित किया, तुम सुरक्षित हो क्योंकि तुम अपने सारे परिवार सहित कृष्ण के भक्त बन चुके हो। कृष्ण की कृपा से पांडवों ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया था और बड़े बड़े राजाओं तथा देवताओं के द्वारा उत्पन्न किए गए संकटों से अपने को बचा लिया था। इस प्रकार वे इसके जीते जागते उदाहरण हैं कि कृष्ण की कृपा से किस प्रकार सुरक्षित रहा जाता है। हर व्यक्ति को पांडवों का अनुकरण करना चाहिए जिन्होंने यह दिखलाया है कि किस प्रकार कृष्ण की कृपा से बचा जा सकता है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य यह शिक्षा देना है कि हर व्यक्ति किस तरह इस जगत में शांति पूर्वक रहे और अंत में भगवत धाम वापस जा सके। भौतिक जगत में पद पद पर विपत्तियां हैं, पदम पदम यद विपदाम नतेशम। फिर भी यदि कोई निसंकोच भाव से कृष्ण की शरण ग्रहण करके उसी में रहा आता है तो वह सरलता से अज्ञान सागर को पार कर सकता है। समाश्रित ये पाद पल्लवम पदम महत पदम पुण्य यशो मुरारे। भक्त के लिए यह विशाल अज्ञान सागर गोखुर के में लगे कीचड़ की तरह है। शुद्ध भक्त तरह तरह से ऊपर उठने के प्रयास की चिंता न करता हुआ कृष्ण के दास के सुरक्षित पद पर बना रहता है और उसका जीवन शाश्वत रूप से सुरक्षित रहता है। अनुवाद मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पांडव नारद मुनि द्वारा पांडवों को बहुत ही भाग्यशाली समझा गया है। नारद मुनि जैसे महात्मा भौतिक स्थिति को नहीं देखते लेकिन भावना को देखते हैं, चेतना को देखते हैं। इस समय पांडव जो हैं राजसूय यज्ञ होने के बाद पूरी दुनिया को जीत लिए थे और पहले उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ, उनको अपमानित किया गया, वे अपना राज्य खो बैठे थे, अपनी सारी भौतिक संपत्ति खो बैठे थे। एक समय सारे पांडव जंगल में रह रहे थे, भटकते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर। उनके पास इतनी भी संपत्ति नहीं थी जितने कि एक सुई के नोक पर रह सके। उतना ही नहीं, लेकिन उनका जीवन भी खतरे में था। कुरु द्वारा उनका शिकार किया जा रहा था और बड़े बड़े राक्षसों से भी उनको बहुत भय था जंगलों में। और एक बार वे राजा के रूप में हस्तिनापुर में महलों में रह रहे थे। तो जहां तक नारद मुनि का सवाल है, उनकी दृष्टिकोण से पांडव दोनों ही जगह पर बहुत ही भाग्यशाली हैं। नारद मुनि देखते हैं कि वो जंगल में रह रहे हैं इसलिए भाग्यशाली नहीं, वो महल में रह रहे हैं इसलिए भाग्यशाली नहीं। नारद मुनि जैसे महात्मा के लिए इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आप दुनिया के राजा हों और आपकी सब लोग स्तुति कर रहे हों, या आपको छल पूर्वक आपसे सब कुछ आपके जीवन में ले लिया गया हो, आपकी निंदा कर रहे हों और बिना किसी चीज के केवल खतरों में आप रह रहे हों। नारद मुनि ने ये देखा कि पांडव जो थे वो बहुत ही भाग्यशाली थे, क्योंकि वो कृष्ण के प्रति उनका अनुराग था। जो जिनका कृष्ण के प्रति अनुराग है, वो व्यक्ति चारों तरफ से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा सुरक्षित होता है। कोई पूछ सकता है कि ये स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि वे सुरक्षित हैं, जबकि उन्होंने सब कुछ खो दिया है। एक भक्त सुरक्षा को भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखता या भौतिक सामग्री एकत्रित करने के दृष्टिकोण से नहीं देखता। जब तक श्रद्धा है, वो श्रद्धा ही अपने आप में सबसे बड़ा धन है। जीवन का सबसे बड़ा धन वही है। और जो सच्चे मन वाला है, कृष्ण उनकी श्रद्धा की रक्षा करते हैं। कृष्ण वचन नहीं देते कि मैं आपके शरीर की रक्षा करूंगा, अपितु वो कहते हैं कि मैं आपके शरीर की रक्षा नहीं करूंगा। वे वचन देते हैं कि आप भक्त हो या नहीं हो, आप बीमार होंगे, आप मरेंगे, ये ऐसा जरूर होगा। आज मरना या कल मरना, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन जो हमारी श्रद्धा है भगवान की कृपा में, वो हमारा असली जीवन है। ये भौतिक शरीर हमारा जीवन नहीं है, ये भौतिक मन हमारा जीवन नहीं है। भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति श्रद्धा, उनकी आज्ञा के प्रति श्रद्धा, उनके भक्तों के प्रति हमारी सेवा, वो हमारा नित्य जीवन है। और कृष्ण जो प्रामाणिक हैं, उनकी भी रक्षा करेंगे ऐसे भक्तों की, विशेष कर इस तरह जहां हम आज देखते हैं इस श्लोक में। इसलिए नारद मुनि जो कि बहुत बड़े आचार्य हैं, जो बहुत ही अनुभवी हैं इस दुनिया के कार्यभार में, वो स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि पांडवों की वो स्तुति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पांडवों ने उनकी श्रद्धा की रक्षा की, उनकी भक्ति की रक्षा की। हम देखते हैं जब प्रहलाद महाराज को पहाड़ों से फेंका गया, राक्षसों द्वारा उन्हें सताया गया, नरभक्षी राक्षसों द्वारा, नारद मुनि सोच रहे थे कि ये कितना भाग्यशाली है। और बाद में प्रहलाद महाराज को राजा बनाया गया, अपने ही पिता के सिंहासन पर बैठाया गया, और तभी भी नारद मुनि सोच रहे थे ये कितना भाग्यशाली है। इसलिए स्वाभाविक रूप से नारद मुनि का जो मत है वो आप जीवन में आपको लाभ हो नुकसान हो, आप सुखी हो दुखी हो, आप पे आपत्ति आ रही हो नहीं आ रही हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। नारद मुनि का स्तर है इस बात को जानने का कि आप कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप प्रामाणिक हैं और भगवान आपकी भक्ति की रक्षा करता है, आपकी श्रद्धा की रक्षा करता है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अर्जुन से कृष्ण ने कहा कि तुम लड़ाई करो, तुम बहुत भाग्यशाली हो जाओगे, हार गए तो स्वर्ग लोक जाओगे और जीत गए तो पूर्ण सृष्टि पर राज्य करोगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवित रहना मर जाना, हार जीत क्या फर्क पड़ता है? एक ही चीज फर्क करती है, मन मना मत भक्तो, कि तुम हमेशा मेरा स्मरण करते रहो, तुम मेरे भक्त हो, मेरा सत्कार करो। और भगवान कहते हैं इस भावना से तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे, या तो इस जीवन में या किसी और जीवन में, लेकिन मेरे पास ही आओगे। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के प्रचलित श्लोक को यहाँ पे लिखते हैं, शमाश्रिते पद पल्लव प्लवम महत्पदम यस पुण्य मुरारे भवा मुदिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। के भौतिक जगत जो है जहाँ पर हर कदम पर विपदाएं हैं, ये एक सागर के समान है, मृत्यु और जन्म का सागर, और जहाँ पर कोई भी जीवित मनुष्य इस सागर को पार नहीं कर सकता, लेकिन जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की शरण लेता है, ये सागर जो है छोटा हो जाता है। कितना छोटा हो जाता है? उतना जितना के एक बछड़े के पैर से बनाए हुए पद चिन्ह में पानी आए, उतना छोटा हो जाता है। अर्थात भगवान की शरण लेने से भौतिक जगत की आपत्तियां नहीं सी हो जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भक्त जो हैं, उनके जीवन में बहुत आपत्तियां आती हैं। और जो भगवान के चरणों की शरण नहीं लेते हैं, उनके जीवन में भी इतनी नहीं आती आपत्तियां। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरी जो शरण लेता है उसके लिए भौतिक आपत्ति नहीं है? हम देखते हैं बहुत सारे महात्मा हैं, उनको सताया गया, मारा गया, तड़पाया गया, और ये सभी लोग प्रामाणिक रूप से भगवान के प्रति इनकी श्रद्धा थी, इसलिए बहुत सारे लोग वो दूसरे अन्य देवताओं की पूजा करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर कृष्ण की पूजा करेंगे तो हम किस प्रकार मुक्त होंगे विपदाओं से। देखो उनके भक्त कितनी बड़ी आपत्ति में है हमेशा। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, के जन्म मृत्यु व्याधि जरा ये असली आपत्तियां हैं, ये दुख का कारण है, ये जीवन के असली दुख यही हैं। और कोई भी देवता इन दुखों से, जन्म से, मृत्यु से, जरा व्याधि से आपको मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि शरीर को जन्म लेना है और मरना है, ये प्रकृति का नियम है और उसको पलटा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण भगवान की शरण लें, उनकी उनका स्मरण करें, तो हम धीरे धीरे शारीरिक मनोभाव से मुक्त हो जाते हैं, और शारीरिक स्तर से हम उठ जाएं तो फिर कोई डर ही नहीं है। जब तक आप ये समझेंगे कि आप शरीर है तो कोई संभावना नहीं है निर्भय होने का, बिल्कुल ही नहीं हम लोग निर्भर हो सकते अगर हम अपने आप को शरीर समझें, क्योंकि शरीर हमेशा खतरे में रहेगा, आप भले कोई भी हो, शरीर का नाश होना ही है। इसलिए जो कोई श्री कृष्ण की शरण लेता है और अपने आप को भगवान का नित्य सेवक करके पहचानता है और इस शरीर के क्षेत्र का भोगी नहीं पहचानता, उसके लिए कोई डर नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा अग्नि से जलाई नहीं जाती, हवा से सुखाई नहीं जा सकती, किसी अस्त्र शस्त्र से काटी नहीं जा सकती, न हन्यते हन्य माने शरीर है। आत्मा बड़ी आश्चर्यजनक है, शरीर मर भी जाए तो आत्मा वैसे ही रहती है। कृष्ण कहते हैं कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, कुछ लोग आत्मा के बारे में आश्चर्यजनक रूप से बोलते हैं। आत्मा आश्चर्यजनक है क्योंकि आत्मा जो है हमारे सोचने के भौतिक दृष्टिकोण से परे है, और आत्मा के कार्य क्या है, हमेशा कृष्ण का स्मरण करना और उनकी प्रेममयी सेवा में लगे रहना। तो जो कोई शरण लेता है भौतिक आशीर्वाद के लिए नहीं, लेकिन भगवान का नित्य सेवक ऐसा अपने आप को पहचान के, ऐसा व्यक्ति और केवल ऐसा ही व्यक्ति सारे डर से मुक्त हो जाता है इस भौतिक जगत के। और ऐसा व्यक्ति सबसे ज्यादा भाग्यशाली है जीवन की किसी भी स्थिति में। आप देखते हैं महात्मा लोग जो हैं वो भौतिक स्थिति में अपनी खुशी नहीं ढूंढते। किसी भी स्थिति में हम रहें, हम भगवान के लिए अगर रो के पुकारें तो हम भाग्यशाली हैं। कई बार हम बहुत इस भौतिक जगत में आरामदायक हो जाते हैं और इस आरामदायक स्थिति में हम कृष्ण की ओर शरण नहीं लेते तो हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं। कभी कभी कृष्ण हमें जो चाहिए हमें देता है और कभी कभी सब कुछ ले लेते हैं। युधिष्ठिर महाराज एक बार कृष्ण के पास गए और पूछे, कृष्ण हम आपके भक्त हैं, आप सब चीज के नियंत्रक हैं, आपकी इच्छा के बिना एक घास का तिनका भी नहीं हिलता, तो फिर ऐसा क्यों है कि हमने अपना जीवन आपको शरणागत किया है और आप सब कुछ ले रहे हैं, हम अपमानित हो रहे हैं, आपने हमको जंगल में फेंक दिया, हम भटक रहे हैं 14 साल से, हम पृथ्वी के राजा होने चाहिए लेकिन उतना ही हम हमेशा खतरे में हैं और इतनी कठिनाइयां हैं। ऐसा आप अपने भक्तों के साथ क्यों करते हैं भगवान? भगवान कृष्ण ने कहा, यस्याहम अनुग्रहामि हरिषे तद्धनम शनये, कि जब मैं अपनी कृपा किसी के ऊपर दिखाता हूँ तो उसको जो कुछ चाहिए उसे देता हूँ, बहुत प्रख्यात हो जाता है, बहुत आरामदायक जीवन उसे प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, इस जगत में वो खुशी से रहता है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी कृपा का पहला इंस्टॉलमेंट ये है कि मैं अपने भक्त के पास जो कुछ है उसके पास सब ले लेता हूँ, ताकि उसके पास और कोई चारा नहीं हो मेरे अलावा, मेरे ही शरण हो इकलौती। न्यू वृंदावन में एक भक्त है, वो न्यू वृंदावन में 1973 में आए, वहां पे ब्रह्मचारी थे, बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, पर धीरे धीरे उनका विवाह हो गया और वो उनका जीवन बहुत आरामदायक हो गया। जब हम बहुत आरामदायक जीवन जीने लगते हैं तो ऐसा होता है कि हमारी जो पुरानी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, वो वापस आने लगती हैं और हम लोग उसको वापस करने लगते हैं, बुरी आदतों को। तो इस प्रकार वो भी धीरे धीरे अपनी सेवा कम करने लगा। चार नियमों का पालन ठीक से नहीं करने लगा और धीरे धीरे वो न्यू वृंदावन छोड़ के चला गया, बाहर जाके कुछ काम काज ले लिया। फिर भी वो भक्त था, उसने दूसरे वैष्णवों की निंदा नहीं की, अपराध नहीं किया। कभी कभी वो जप किया करता हरे कृष्णा। भौतिक रूप से उसका जीवन अच्छा चल रहा था और एक दिन ये कुछ कई वर्षों की पहले की बात है, करीब 10-11 वर्ष के पहले, एक भक्त उनको मिले और उनसे कहा, उन्होंने कहा कि आप कृष्ण भक्ति में गंभीर कब होंगे, क्या होना चाहिए आपके जीवन में कि आप गंभीर होंगे, आप बराबर से भक्ति क्यों नहीं कर रहे। तो उसने कहा कि अगर मुझे कैंसर हो जाए तो लगता है मैं गंभीर हो जाऊंगा, नहीं तो मैं कभी गंभीर नहीं होने वाला भक्ति में। आप जानते हैं भगवान तो हमारे हृदय में स्थित हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। और कृष्ण भगवान तो भौतिक चीजों की उनका कोई लेना देना है नहीं। कृष्ण चाहते हैं कि उनका भक्त और गंभीर हो जाए, इसलिए पिछले वर्ष ही पता लगा कि उन्हें बहुत ही तीव्र कैंसर हो चुका है। उन्होंने सारी दवाइयां ली लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ और अभी डॉक्टर ने उनसे कहा कि केवल 2 महीने उनके पास हैं। तो वो न्यू वृंदावन में वापस लौटे, अभी दिन भर वो श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और बाकी भक्त भी कृपा के कारण उनके चारों ओर 24 घंटे कीर्तन कर रहे हैं। पिछला लेटर मुझको आया, एक चिट्ठी आई कि भक्त चारों ओर कीर्तन कर रहे हैं उनके और दूसरे शास्त्र पढ़ रहे हैं, भगवान का स्मरण करा रहे हैं उनको। थोड़े दिन में वो अपना ध्येय त्याग देंगे और हम देख सकते हैं कितने भाग्यशाली हैं। ये व्यक्ति सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। अब एक भौतिकवादी इस दृष्टिकोण से नहीं देखेगा कि ये व्यक्ति कैसे भाग्यशाली, ये तो अभी मरने वाला है, उसको इतनी वेदना हो रही है। सामान्य रूप से लोग समझते हैं स्वास्थ्य जो है वो असली भाग्य, अच्छा भाग्य है। और इस व्यक्ति का स्वास्थ्य तो इतना खराब है, इससे बुरा किसी का नहीं हो सकता। लोग समझते हैं मन की शांति हमारा भाग्य है और इस व्यक्ति का मन, आप सोच सकते हैं मृत्यु निकट आ रही है तो मन कितना विचलित होगा। लेकिन वो भाग्यशाली इसलिए है क्योंकि वो कृष्ण की शरण ले रहा है। इसलिए असली भाग्य का स्तर ये है कि कृष्ण भावना मृत होना। जिस हद तक हम दृढ़ हैं, हम उत्साहित हैं भगवान का स्मरण करने के लिए और उनकी सेवा में लगे रहने के लिए, ये असली भाग्य का स्तर है। तो नारद मुनि और उनके प्रतिनिधि भगवान के महान भक्त, उनका ऐसा दृष्टिकोण है जो साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। भगवत गीता कहती है यानीचा सर्वभूतानां सानिशा पश्यतो मुने, कि जो महान संतों का जागने का समय है, साधारण व्यक्ति का वो सोने का समय है। और जो समय साधारण व्यक्ति का जागृत होने का समय है, वो महान संतों के सोने का समय है। एक भौतिकवादी और एक आध्यात्मिकवादी, दोनों के बहुत ही विपरीत दृष्टिकोण है इस जगत में। एक भौतिकवादी हमेशा जागृत है स्वयं की इंद्रतृप्ति के लिए, इंद्रिय भोग करने, और एक साधु जो है इन चीजों के प्रति वो सोया हुआ है। एक महान संत आत्म साक्षात्कार को बहुत जागृत है, भगवान की कृपा को चारों तरफ देख रहा है और पूर्ण उत्साह रूप से फायदा उठा रहा है भगवान की सेवा करने के लिए। और भौतिकवादी इस जगह सो रहा है, इन चीजों में उसका बिल्कुल ध्यान नहीं। कृष्ण भावना अमृत कैसे प्राप्त होती है? हमारी आतुरता सेवा करने की, इससे प्राप्त होती है। यही मूल्य है हमारी आतुरता सेवा करने की। जब हम देखेंगे कि अच्छा भाग्य हमें प्राप्त हुआ है सेवा करने का, तो हमें उत्साहित रहना चाहिए सेवा करने के लिए। एक भक्त के लिए जिसने इस भौतिक जगत की सारी चीजों को त्याग दिया है, बलिदान किया है भगवान की कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, सेवा का मौका मिलना और सेवा फिर नहीं करना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। उसको इतना कुछ मिल रहा है और वो बिल्कुल कुछ भी नहीं ले रहा, इतनी कृपा मिल रही है और नहीं ले रहा। एक भक्त बहुत ही उत्साहित रहना चाहिए, आतुर रहना चाहिए कोई भी सेवा जो वो कर सके उसके लिए, ये जानते हुए कि ये सेवा जो है वो जीवन का असली भाग्य है, ऐश्वर्य है। किसी भी स्थिति में सेवा, भक्तिमय सेवा हमारे लिए उपस्थित है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है इस भौतिक जगत में जहाँ पर हमें गुरु और कृष्ण को सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा, और यही हमारा असली भाग्य है। उनका स्मरण करके, उनका नाम जप करके, उनके बारे में सुन के, श्रवण करके और उनकी सेवा में लग के, ये मौका ही हमारे लिए हमारा असली भाग्य है। और जो महात्माएं वो देखते हैं कि जिस हद तक हम लोग उत्साहित है सेवा करने के लिए, उस हद तक हम लोग भाग्यशाली हैं। जिस हद तक हम लोग उत्साहित नहीं है सेवा करने के लिए, उतने ही हम दुर्भाग्यशाली हैं। देखिए इस भौतिक जगत के लोग कितने उत्साहित हैं अपने कार्यभार को करने के लिए, थोड़ा पैसा कमाने के लिए, थोड़े परिवार वालों को संतुष्ट करने के लिए। इतना मेहनत करते हैं वह लोग, इतने बलिदान देते हैं खुद की इंद्र तृप्ति के लिए, लेकिन जब कृष्ण भावना होने की बात आती है तो बड़े आलसी हो जाते हैं, अनिच्छुक हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि हम केवल भक्त हैं इतना ही काफी है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है।